الله.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورة الأنبياء کی یہ جو آیات ہیں 34 سے لے کے 47 تک 34 سے 47 تو ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر مکمل کر لی تھی پڑھ کے اور معرف و وسائل ہم نے پڑھنے شروع کر دیے تھے پچھلی کلاس میں. تو ان میں پیچھے کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تو اس کی تفسیر میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ یہ جو کافر ہیں یہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ جائے، کوئی مصیبت گھیر لے آ کر کے، تو اس کو یہ بطور دلیل کے استعمال کریں گے کہ دیکھو یہ نبی نہیں ہیں، اگر نبی ہوتے تو ان کے اوپر موت نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو جن کو تم نبی مانتے ہو، پچھلی امتوں میں تم مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو نبی، موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو ان کے اوپر موت آئی اور تم اس بات کو مانتے ہو کہ ان کے اوپر موت آئی. تو جب تم ان کو نبی بھی مانتے ہو اور ان کی موت کو بھی مانتے ہو تو ان کے ساتھ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ اگر ان کے اوپر موت آ گئی تو یہ نبی نہیں ہے؟ یعنی اپنی دلیل کو اپنی ہی دلیل سے تم رد کرتے ہو بیسیکلی، ہے نا؟ تو یہ ایک استدلال کا طریقہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ جب آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، غلط انڈرسٹینڈنگ، رائٹ، غلط فہمی، اس غلط فہمی کو دور کرنا یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے، جب تک اس کی غلط فہمی دور نہیں ہوگی نا، یا اس کا جو اپنے دماغ میں، ذہن میں اس نے ایک غلط تصور بنایا ہوا ہے، جب تک وہ غلط تصور اس کے ذہن سے نہیں نکلے گا تو اس وقت تک آپ کی بات اس کے ذہن میں اتر نہیں سکے گی. ٹھیک ہے، جو پہلے ایک غلط تصور بنا ہوا ہے اس غلط تصور کی جب تک نفی نہیں ہوگی، نگیشن نہیں ہوگی، اس وقت تک نیا تصور یا صحیح، جو صحیح تصور آپ اس کو دینا چاہتے ہیں وہ اس کے دماغ میں نہیں اتر سکتا، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے نا، اندر جگہ ہی نہیں ہے، اندر تو جگہ بھری ہوئی ہے ایک غلط تصور سے. اسی وجہ سے جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، وہ اس بات سے سب سے زیادہ واقف ہے کہ میں نے بندوں کو ایسا بنایا کہ ان کے اندر ایک لمیٹڈ سپیس ہے، اس لمیٹڈ سپیس کے اندر اگر کوئی غلط نظریہ پھنسا ہوا ہے اندر، بھرا ہوا ہے اندر، تو جب تک اس پہلی چیز کو تم نکالو گے نہیں، نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ اللہ کو یہ بات پتا ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ ہم دو چیزیں ایک ساتھ نہیں لے کے چل سکتے، ہے نا؟ ایک غلط تصور اور ایک صحیح تصور دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ پہلے کو ختم کرو گے تب نیا آئے گا، ہے نا؟ نئے کو ختم کرو گے تب اگلا نیا آئے گا، ہے نا بھائی؟ تو اسی وجہ سے ہمارے پروردگار نے ہمیں کلمہ سکھایا. کلمہ، یہ جو کلمہ ہے یہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے بھائی؟ تو یہ تو سب کو پتا ہے نا، طیب معنی پاک. لیکن یہ پاکی ہوتی کیسے ہے بھائی؟ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ. یہ پاکی کیسے ہوتی ہے؟ یہ پاکی ایسے ہوتی ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں، ویسے پوچھنا تو آپ سے چاہیے، پاکی کیسے آتی ہے کسی چیز کے اندر؟ Stating the obvious. تو let's state the obvious. یعنی بالکل جو ظاہر بات ہے اس کو بیان کریں، ہے نا؟ پاکی کیسے آتی ہے؟ جی آپ سے جواب مطلوب ہے، پاکی کیسے آتی ہے بھائی؟ اب خواتین ہیں گھر کے اندر جو ماشاءاللہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، تو ان کو घर के अंदर बच्चों की नजासत, कभी कोई और गंदगी हो गई, कभी किसी को तय हो गई, मतली हो गई, उल्टी हो गई, है ना, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको पाक करती हैं कि नहीं करती हैं, कैसे करती हैं भाई उसको पाक? इन्होंने जवाब दिया, द नजासत को निकाल कर, नापाक चीज को धोकर, यानी नापाकी को दूर करके पाकी आती है ना, नापाकी को दूर करते हैं तब कोई चीज पाक होती है। अगर आप नापाकी को दूर ही नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नापाकी दूर किए बगैर पाकी आ जाए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, यह हो सकता है? नापाकी को दूर किए बगैर पाकी आ जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। वो जो इतना पानी बहाते हैं और उसकी निचोड़ते हैं, ये सब जो आप फिका के अंदर पढ़ रही होंगी, तो वो सब क्या है? नापाकी को दूर करना। तो भाई जिस तरीके से जिस्मानी नापाकी होती है, मेटीरियल फिजिकल मादी नापाकी होती है, उसी तरीके से एक रूहानी नापाकी भी होती है। रूहानी नापाकी, वो रूहानी नापाकी क्या होती है? जहन के अंदर जो गलत तसव्वुरात बने हुए होते हैं, दिमाग के अंदर, जहन के अंदर गलत ख्यालात बने हुए होते हैं ना, ये जो है ना रूहानी नापाकी होते हैं, रूहानी नापाकी होते हैं। अब हम चाहते हैं कि जी इसको पाक कर लिया जाए, अपने आप को पाक कर लें, तो भाई जब तक रूहानी नापाकी यानी गलत तसव्वुरात, गलत सोचें, गलत अफकार जहन से नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक जहन पाक नहीं हो सकता, है ना। हकीकत तो ये है, लेकिन शैतान हमारा दुश्मन, शैतान नहीं चाहता कि हम पाक हो जाएं, तो इस वजह से शैतान ने हमें क्या धोखा दिया हुआ है, क्या धोखा दिया हुआ है शैतान ने जी, ये भी आप बताएं, कोई और बताए तो ज्यादा अच्छा है, जो दो स्टूडेंट्स बता चुके हैं उनके अलावा कोई बताए, शैतान ने हमें क्या धोखा दिया हुआ है फिर जी? शैतान ने इंसान को किस धोखे में मुबतला किया हुआ है, इस बात से मुतअल्लिक जवाब चाहिए, क्या धोखा दिया हुआ है शैतान ने हमें? डेट वी स्टिल हैव टाइम, भाई जो बात हो रही है उस बात से मुतालिक जवाब देना, यानी उसी बात में ही जवाब मौजूद है। अब आप कोई दूसरा जवाब लेकर के आ जाएं कहीं दूर दूर पार से, वो हमें नहीं चाहिए। डेट वी स्टिल हैव टाइम, कि हम पाक हैं, कि हमारे अंदर कोई गंदगी है ही नहीं। ये वैसे आपने जवाब गलत तो नहीं दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, लेकिन इस मौके के हिसाब से जो जवाब देना चाहिए था ना, वो क्या था? नहीं, वो जवाब ये था, इस मौके के हिसाब से जो जवाब था ना भाई, मौके की मुनासिबत भी तो एक चीज होती है ना, राइट? तो मौके की मुनासिबत से जवाब ये था कि शैतान ने हमें ये धोखा दिया हुआ है कि पाक होने के लिए जो पुरानी नापाकी है ना, पहले से जो नापाकी है उसको दूर करने की जरूरत नहीं है, नापाकी को दूर करने की जरूरत नहीं है, नापाकी के साथ ही पाकी आ जाएगी, नापाकी को दूर किए बगैर ही पाकी आ जाएगी, है ना। शैतान का ये धोखा है, असल में शैतान ने ये धोखा दिया हुआ है कि नापाकी दूर किए बगैर पाकी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। जब हम शैतान की बात मान लेते हैं कि हाँ वाकई ये सही है कि नापाकी दूर करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही पाकी आ जाएगी, जब हम उसकी ये वाली बात मान लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हम तौबा नहीं करते और तौबा किए बगैर ही नेक अमाल करने शुरू कर देते हैं, तौबा किए बगैर ही नेक अमाल करने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो गुनाह जो है वो तो चलते रहते हैं, क्योंकि तौबा तो करी नहीं है, गुनाह चलते रहते हैं। जब गुनाह चलते रहते हैं ना, तो होता यह है कि गुनाह बढ़ते हैं, गुनाह बढ़ते हैं, गुनाह बढ़ते हैं, है ना। आपकी इबादतें आपको फायदा नहीं दे रही होती, गुनाह जो है वो बढ़ रहे होते हैं आपके अंदर। जब गुनाह बढ़ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है? फिर इंसान की अकल पर पट्टी बंध जाती है, इंसान की अकल पर पट्टी बंध जाती है, ठीक है ना, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, ठीक है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, वो अंधा बहरा गूंगा हो जाता है। जब वो अंधा बहरा गूंगा हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि पहले तो वो अपने गुनाहों को तस्लीम करता था कि हाँ गुनाह मैं कर रहा हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं, लेकिन गुनाह के साथ साथ नेकी भी करता रहूंगा, सब मसला ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वो गुनाहों को मान रहा था, लेकिन जब वो गुनाह करता रहता है करता रहता है, तो एक वक्त उसके ऊपर ऐसा आता है कि अब उसको उसके गुनाह नजर आना ही बंद हो जाते हैं, अब उसके उसके गुना उसको अब गुना लगते ही नहीं है, अब वो गुनाहों का आदी हो जाता है, अब उसको गुनाह जो है ना वो गुनाह नजर नहीं आते, ठीक है ना। तो ये तदरीजन ये दूसरा दर्जा होता है। पहले दर्जा क्या था कि उसने ये समझ लिया, शैतान की ये बात मान ली कि गुनाहों को दूर किए बगैर नेकी कर लो तो तुम पाक हो जाओगे, ठीक है ना। जब उसने पहली बात मान ली तो उसका उसका बिगाड़ शुरू हो गया, बिगाड़ शुरू हो गया। अब वो दूसरे दर्जे पर पहुंचेगा। दूसरा दर्जा क्या होगा कि उसको उसके गुनाह जो है ना वो नजर ही नहीं आएंगे, वो समझेगा मैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहा, जैसे आपने अभी कहा ना कि मैं तो पहले से पाक हूं, मैं तो गुनाह कर ही नहीं रहा, ठीक है ना, मैं तो खाली नहीं किया कर रहा हूं, मैं तो खाली नमाजें पढ़ रहा हूं, मैं तो खाली जो है वो सदका खैरात कर रहा हूं, मैं तो नफली रोजे रख रहा हूं, मैं तो गुनाह कर ही नहीं रहा, उसको गुनाह नजर नहीं आएंगे अब, ठीक है ना। ये दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा क्या है, तीसरा दर्जा क्या है गुमराही का, तीसरा दर्जा ये आप बता दें। पहला दर्जा क्या था कि गुनाहों को दूर किए बगैर ही नेकी करो, ठीक है ना, दोनों साथ साथ चल जाएंगे। दूसरा दर्जा क्या था कि अब गुनाहों को मानते ही नहीं है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं तो बस नेकियां कर रहा हूं, उसको बस अपनी नेकियां नजर आती हैं, गुनाह नजर ही नहीं आते। ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा क्या है गुमराही का, तीसरा दर्जा और बल्कि आखिरी दर्जा समझ लें, हम तो ऑलरेडी मुसलमान हैं, हम तो पाकी ही रखते हैं, जाहिरी पाकी के बारे में कॉन्शियस बनाया है, बातनी के बारे में गफलत। ये भी एक है, नापाकी दूर करने की जरूरत नहीं है। जी यही पूछना चाह रहे थे आपसे। अभी डायरेक्ट मैसेज सारी लिख रही है, ऐसा तो नहीं है कि, खैर ठीक है, असल में आप डायरेक्ट मैसेज लिखती हैं तो बेशक डांट से बच जाती हैं, लेकिन दूसरों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ ना, किसी ने जवाब लिखा है तो वो क्या जवाब लिखा था वगैरह, हिस खत्म हो जाती है, नहीं हिस खत्म हो जाएगी, ये तो दूसरा दर्जा है, उसे गुना गुना नहीं लगता। इस बात को और क्लियर करें, गुना गुना नहीं लगता, ये बात तो दूसरा दर्जा है ना कि अब उसको गुना नजर नहीं आ रहे, गुनाहों को मुजयन बना के पेश करता है। इतना मुश्किल अल्फाज, थोड़ा आसान अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, गुनाह को मुजयन बना के पेश करता है, क्या मतलब इस बात का, थोड़ा सा समझा देना क्या मतलब। तीसरा दर्जा क्या होता है गुमराही का, उसे गुनाह करने में मजा आता है, नहीं मजा आता जो है ना ये तीसरा दर्जा नहीं है, ये आप जो बात करी ना मजा आता है, ये तो छोड़ दें इसको, अभी और मुश्किल हो जाएगी बात। हाँ नेकी समझ के करते हैं, नेकी समझ के वो गुनाह कर रहा होता है, लेकिन गुनाह को वो अब नेकी समझना शुरू कर देता है, अब गुनाह को नेकी समझना शुरू कर देता है, ठीक है। बाकी क्या लिखा है, नेकी और गुनाह में फर्क खत्म हो जाता है, हाँ फर्क खत्म हो जाता है, ये भी कह सकते हैं, गुनाह को वो नेकी समझना शुरू कर देता है और हत्ता के नेकी को गुनाह समझना शुरू कर देता है, गुनाह को नेकी समझना शुरू कर देता है और नेकी को गुनाह समझना शुरू कर देता है, ठीक है। जो उसे नेकी की तलकीन करे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, नहीं जो उसे नेकी की तलकीन करे उसको वो दुश्मन समझना शुरू कर देता है, ये भी तीसरे दर्जे में जाके यही होता है, ठीक है। तीसरे दर्जे में ये हम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो ये गुनाह पे शर्मिंदगी नहीं होती कि हम उसको सही समझते हैं, हाँ बस ठीक है। तीसरा दर्जा ये होता है कि अब वो गुनाह को नेकी समझना शुरू कर देता है और नेकी को गुनाह समझना शुरू कर देता है, ठीक है ना। ये सब कहाँ पर हो रहा होता है, ये सब का सब जहन में हो रहा होता है, उसके दिमाग में अकल में ये सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना नेक बनने के लिए तौबा शर्त है, और तौबा का मतलब ये होता है कि गुनाह के ऊपर नादम और शर्मिंदा हो और उसको छोड़ने का इरादा कर ले और उसके लिए कुछ कुछ तदाबीर कर ले, कुछ मेहनत कर ले, कुछ 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 अमल शुरू कर दे, किसी किसी नेक सोहबत का हिस्सा बन जाए, राइट। ये तौबा की शराइत में से एक शर्त है कि नेक सोहबत का हिस्सा बन जाए, ठीक है, बुरी चीजों को छोड़ दे, बुरी सोहबत को छोड़ दे, तो जो तौबा होती है ना, ये होती है पाकी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है ना, ये कलमा तौबा है, ये कलमा तौबा है, ठीक है। और दीन में दाखिल इस कलमे के बगैर कोई नहीं हो सकता, ये तौबा है, ठीक है ना। वरना तो आप बुतों की परस्तिश कर रहे थे, ये जो काफिर थे मक्का मुकरमा में और अरब के अंदर, जो काफिर थे बुतों की परस्तिश कर रहे थे, साथ साथ वो आकर के नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज में पढ़ना शुरू कर देते। क्या मसला था? वो लोग तैयार थे इस बात के लिए कि हम बुतों की परस्तिश के साथ साथ आपके पास आकर के हम आपकी तरीके से नमाज भी पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा? नहीं, तुम उससे तौबा करो, तुम उस नजासत को, जहनी नजासत को अपने अंदर से बाहर निकालो, ठीक है ना, जहनी नजासत को, ठीक है, बाहर निकालो, क्लीन करो, फिर तुम मेरे दीन में दाखिल हो गए, वरना तुम दीन में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। तौबा कैसे करें? तौबा ऐसे करें, जिन्होंने सब सवाल पूछा है डायरेक्ट मैसेज के अंदर कि तौबा कैसे करें, तो तौबा ऐसे करें कि इसी वक्त अल्लाह ताला से ये बात कर लें दिल ही दिल के अंदर कि ए अल्लाह, मैंने जितने गुनाह किए हैं, जितने गुनाह कर रही हूं और पहले किए थे, मैं उन सब के ऊपर नादिम और शर्मिंदा हूं, मैं उन सब के ऊपर नादिम शर्मिंदा हूं। हाँ, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कौन कौन से गुनाह किए हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि कौन से काम मैं करती हूं और कर रही हूं जो कि गुनाह है, लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा ना कि ये चीज गुनाह थी जो मैंने करी, या जो मैं कर रही हूं ये गुनाह है, वैसे वैसे मैं उसके ऊपर नदामत का इजहार करती रहूंगी, मैं उसके ऊपर नादिम होती रहूंगी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी, मैं उसके ऊपर इसरार नहीं करूंगी, बल्कि उसके ऊपर नादिम होंगी कि हाँ, मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना। ये तौबा की पहली शर्त है, ये तौबा का पहला रुकन भी कह सकते हैं उसको, नादिम और शर्मिंदा होना। तौबा कैसे करें का दूसरा रुकन क्या है? दूसरा रुकन यह है कि इस वक्त जब मैं तौबा कर रही हूं ना, मैं आपसे ये इरादा कर लेती हूं कि मैं आइंदा नहीं करूंगी उन गुनाहों को। सिर्फ ये नहीं कि पीछे जो गुनाह कर लिए हैं या अभी जो मैं गुनाह कर रही हूं उसके ऊपर नादिम और शर्मिंदा होगी, बल्कि साथ साथ ये भी मैं इरादा करती हूं कि जैसे जैसे मुझे पता चल जाएगा ना कि ये गुनाह है, बस मैं उसी वक्त ये फैसला कर लूंगी, अब नहीं करूंगी, आइंदा नहीं करूंगी। इसको कहते हैं गुनाह छोड़ने का इरादा कर लेना, ये भी तौबा का रुकन है, ठीक है, ये भी तौबा का रुकन है, ये दूसरा रुकन हो गया, ठीक है ना। और तौबा का तीसरा रुकन क्या है कि अब आइंदा जिंदगी में मेरे लिए तो गुनाहों से बचना ऐ अल्लाह बहुत मुश्किल है, ये भी अल्लाह ताला को कह दें कि मेरे लिए गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है, जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा कि मैं ये वाला गुनाह कर रही हूँ, ये वाला गुनाह कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं नादिम तो होती जाऊंगी उसके ऊपर, मैं आइंदा ना करने का इरादा तो करती जाऊंगी, लेकिन क्या वाकई मैं आइंदा जिंदगी में उससे बच सकूंगी? मेरे लिए तो ये बात बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐ अल्लाह, मैं आपसे मदद मांगती हूं कि आप मुझे बचा लीजिएगा उन गुनाहों से जिनके ऊपर मैं नादम शर्मिंदा भी हो चुकी, जिनको आइंदा ना करने का मैंने इरादा भी कर लिया, अब ए अल्लाह, आप मुझे उनसे बचा भी लीजिएगा, मैं इसके लिए जो है ना वो आपसे मदद मांगती हूं, और जो भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं इन गुनाहों से अपने आप को बचा सकूं, मैं उस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। यानी जैसे मुझे कोई नेक सोहबत की तरफ कोई बुला रहा होगा कि भाई आप इस क्लास को ज्वाइन कर लें, आप इस माहौल में आ जाएं, आप इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं जहां पर कि नेकी की बातें होती हैं और गुनाहों से छूटने की बातें होती हैं, मैं उस माहौल का हिस्सा बन जाऊंगी, अपने तौर पर मैं करूंगी जो मैं कर सकती हूँ, बाकी ए अल्लाह मदद आप मेरी फरमा दें। ये तीन चीजें कर लेना, ये तीन चीजें मिलकर के तौबा बन जाती हैं, ये तीन चीजें मिलकर तौबा बन जाती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने और बहुत बुनियादी, लोग इस तरह के सवाल नहीं करते, तो समझने, हमें तो पहले से पता है जी तौबा कैसे करनी है ना, ये कोई नई बात बताएंगे क्या क्या, हमें तो सवाल ही नहीं करते, इसका मतलब है पहले से पता है हमें? नहीं, नहीं पता हमें पहले से, हमें ये बुनियादी बातें पहले से नहीं पता होती हैं, ठीक ठीक है ना, हम उनके अंदर कमी कोताही कर जाते हैं। हम जैसे तीन शर्तें हैं तौबा की, तीन रुकन है तौबा के, है ना, शर्त शर्त और रुकन वैसे तो अलग अलग होता है फिक्र के हिसाब से, लेकिन इनको आप एक ही चीज समझें, रुकन शर्त एक ही चीज, ठीक है ना, ये एक ही चीज है, यानी तीन रुकन भी हैं तीन शर्त भी हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों का नहीं पता होता, हम किसी एक चीज को तौबा समझ रहे होते हैं, तीन में से एक को तौबा समझ रहे होते हैं, या तीन में से दो को तौबा समझ रहे होते हैं, हम तीनों को मिलकर के तौबा नहीं समझ रहे होते, चूंकि हमारा इल्म ही नाकिस है, हमें तौबा का पूरा पता ही नहीं है, इस वजह से सारी जिंदगी गुजर जाती है, हम तौबा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा इल्म ही नाकिस है इस मामले में ना, हमें पता ही नहीं कि तौबा का मतलब क्या होता है और तौबा कैसे करी जाती है। तो बुनियादी सवाल भी अगर जहन में आए ना, कर लेना चाहिए, अजम्पशंस के ऊपर जिंदगी ना गुजारें, ठीक है। तो ये कलमा जो है, ये कलमा तौबा है, जब तौबा करेंगे तब आगे बात बढ़ेगी, उसके बगैर आगे बात जो है ना वो बढ़ नहीं पाती है, खिसकते रहते हैं, सिसकते रहते हैं बस। तो फिर मौत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मौत की तारीफ क्या होती है, कि इस फिजिकल बॉडी में से रूह का निकल जाना, जसद अंसरी, फिजिकल बॉडी, इसके अंदर से जो जसद रूहानी है, यानी एक रूहानी जिस्म जो है ना, नूरानी जिस्म, रूहानी जिस्म मतलब नूरानी जिस्म जो कि रूह है, वो इसके अंदर से निकल जाना ये है। और ये रूहानी जिस्म इस जसद अंसरी के अंदर ऐसे ही मौजूद है जैसे कि किसी चीज का जूस, अरक उसके अंदर होता है, जैसे अर्क गुलाब के अंदर उसका, सॉरी गुलाब के अंदर उसका अर्क होता है, निचोड़ने से वो अर्क निकलता है, ठीक है। अच्छा आगे लिखते हैं कि लफ्ज ज़ायक़तुल मौत से इशारा इस तरह पाया जाता है कि हर नफ्स मौत की खास तकलीफ महसूस करेगा, क्योंकि मजा चखने का मुहावरा ऐसी ही मौके में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मजा चखना से मुराद जरूरी नहीं है कि अच्छा मजा चखना, बुरा मजा भी मजा ही होता है ना, और अच्छा मजा भी मजा ही होता है। तो बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है, यानी मौत का मतलब ये नहीं है कि बस आप एक बेमजा सा इंतकाल हो गया, आपने कुछ फील ही नहीं किया, बस आप यहां से वहां चले गए, मुंतकिल हो गए, है ना, आलम दुनिया से आलम बरजख में मुंतकिल हो गए, एंड यू यू डिडंट फील एनीथिंग, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इस इंतकाल के प्रोसेस में, ये जो आप मूव कर रहे होंगे ना यहां से उस दुनिया से उस दुनिया में, इस प्रोसेस में आपको एक चीज टेस्ट करनी पड़ेगी, है ना, जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो बजाहिर अपने घर से बाहर निकलें और पड़ोसी के घर में चले जाएं, तो कोई कोई आपने टेस्ट नहीं किया कोई चीज, मेहनत मुशक्कत और कोई बहुत मजा, कोई आपको खास ऐसा नहीं फील होता, बस एक नॉर्मल सी बात है, इधर से उठ के उधर चले गए। लेकिन जब आप बाकायदा घर शिफ्ट करती हैं, है ना भाई, एक जगह से शहर में दूसरी जगह शहर में घर शिफ्ट कर रही हैं, या किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर रही हैं, तो अब जो ये शिफ्टिंग होती है इसके अंदर मजा आता है कि नहीं आता, सामान पैक भी करना पड़ता है, सामान जो है वो उठाना पड़ता है, बहुत तकलीफ बहुत मशक्कत होती है, हत्ता कि इवन आम सफर भी करते हैं तो उसके अंदर भी पैकिंग करनी होती है, उसके अंदर भी जो है वो मर्दों को जो है वो ज्यादा सामान उठाना पड़ता है ना, औरतों को जो है पैकिंग करनी पड़ती है, वो औरतों की मशक्कत होती है पैकिंग करना, मर्द उमूमन जो है वो पैकिंग अपनी आखिरी वक्त में करते हैं हमारे जैसे कम से कम, है ना, लेकिन जब सूटकेस को वजन करना होता है तो उधर तो फिर खवातीन कहती है ना जी वजन तो आप नहीं करना है, मेरी तो कमर वैसे ही पैकिंग कर करके टूट गई है ना, तो फिर उमर साहब जो होता है वो 23 किलोग्राम का सूटकेस, बल्कि वो 23 शुरू में तो वो तकरीबन 30 किलोग्राम का बना हुआ होता है, फिर उसको उठा करके वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं, फिर उसमें से कम करवाते हैं, है ना। पहले जो है ना जो इंटरनेशनल ट्रैवल होता था, कम से कम यूएस वाला जो ट्रैवल होता था, तो उसके अंदर हर बैग जो अलाउड वेट था ना उसका था 32 kg, है ना, हम अमरीका से पाकिस्तान ट्रैवल करते थे या पाकिस्तान से अमरीका, 32 kg का होता था। अब आप तस्वीर करें 32 kg जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वजन होता है, तो घर के मर्द जो है ना वो 32 kg वाला सूटकेस उठा उठा करके ना सिर्फ वजन कर रहे होते थे बल्कि उसको उठा उठा करके गाड़ी में भी रख रहे होते थे, है ना, और फिर वहां पे एयरपोर्ट पे जाकर के गाड़ी में से निकाल निकाल करके फिर वो कार्ट के ऊपर रख रहे होते थे, एयरपोर्ट वाली कार्ट, और फिर उसको उठा करके जो है वो जहाँ पे चेक इन काउंटर होता है वहां पे उठा करके रखे होते थे। हर जगह तो कुली नहीं होते, पाकिस्तान में कुली होते हैं, अमरीका में तो कुली नहीं होते, है ना। तो जब 32 केजी को एयरलाइन वालों ने घटा करके 23 केजी कर दिया ना, तो मर्दों के दिलों से जो दुआएं उनको मिली होंगी, औरतों को इसका अंदाजा नहीं है। औरतों को तो यह हो, पहले हम इतना ज्यादा सामान ले जा सकते थे, अब सामान इतना कम हो गया, अब हम ज्यादा तोहफे और ज्यादा चीजें नहीं लेके जा सकते, 10 केजी जो है वो उन्होंने तकरीबन कम कर दिया। लेकिन मर्द दिल ही दिल में बहुत खुश, शुक्र है खुदा का, 32 केजी के बजाय 23 केजी तो बहुत बेहतर होता है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो बहरहाल बात ये कि जब आप मूव कर रहे होते हैं तो यू हैव टू टेस्ट, है ना, टेस्ट करना पड़ता है आपको। यहां पर मौत के बारे में अल्लाह ताला ने टेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसी को फरमा रहे हैं कि तकलीफ महसूस करेगा, क्योंकि मजा चखने का मुहावरा ऐसे ही मौके में इस्तेमाल होता है। और ये जाहिर है कि रूह का जैसा इत्तेसाल बदन के साथ है, उसके निकलने के वक्त तकलीफ और अलम का एहसास अमर तबीई है, ठीक है ना। यानी जब बदन के अंदर से रूह निकल रही होती है, तो चूंकि रूह बदन के रेशे रेशे रग रग के अंदर पैवस्त है, तो उसके निकलने में तकलीफ तो होगी। रहा बाज अहलुल्लाह का ये मामला, ठीक है। अच्छा, ये 1 मिनट, किसी ने कोई सवाल भी पूछा है कि ईमान के मुनाफी वसाविस आते हैं, हजरत जी ने मुराकबा इलाज बताया था और वकूफ कल्बी अब काफी कम हो गए मगर खत्म नहीं हुए, तो उस वक्त भी फौरन तौबा करके कलमा पढ़ लें, ईमान का डर लगने लग जाता है। अल्लाह ईमान पे मौत है कि अल्लाह ईमान पे मौत है जी, ठीक है। ये वैसे आपने जो सवाल किया तो मुराकबा वकूफ कल्बी, अब बाकी लोग तो बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन जनरल बात यह है कि जो वसाविस आते हैं ना जहन के अंदर, तो उन वसाविस से ईमान की नफी नहीं होती है। वसाविस को जब आप जमा लेते हैं और उनके ऊपर एतमाद कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ईमान में शक आ जाना। यानी वसाविस को आपने गोया के रोक लिया अपने जहन के अंदर, है ना, अब आप जो है वो उसी के ऊपर सोचे चले जा रहे हैं, उसी पे सोचे चले जा रहे हैं ना, इससे जो है ना ईमान, यानी इससे जो है वो शक पैदा हो जाता है, और शक ईमान को जाहिर कर देता है, वसवसा ईमान को जाहिर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन ऐसे बुरे वसवसे आना, अब ये कोई पसंदीदा चीज तो नहीं है ना कि जी हर वक्त बुरे वसवसे आए चले जा रहे हैं कि अल्लाह के बारे में, ईमान के बारे में, दीन के बारे में, आखिरत के बारे में, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, है ना। क्या पता ये वसवसे आते रहे आते रहे, और किसी ना किसी दिन जो है वो हम इन वसवसों का शिकार हो जाए और इनको अपने जहन में बसा भी ले, फिर तो ईमान खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से इन वसाविस का इलाज भी करना है, ठीक है ना, कि ये वसाविस आने ही बंद हो जाए या कम हो जाए, कम से कम बंद तो खैर बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन कम जरूर हो जाते हैं। तो कम कैसे हो, उसके लिए जिक्र कल्बी मशायख बताते हैं, जिक्र कल्बी, ठीक है ना, जिसकी एक शक्ल जो है वो मुराकबा भी है। तो जब जिक्र कल्बी करते हैं ना, तो उससे जो है ना इंसान का जहन ऐसा ट्रेन हो जाता है कि अब वसवसे आना ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जिक्र कल्बी एक चीज होती है, और दूसरी चीज होती है कि अपने आप को जो जो मुस्बत काम है और जो अच्छी बातें हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मसरूफ कर लें। जिस चीज में इंसान मसरूफ होता है ना, उसको उसी चीज के ही ख्याल आते हैं, है ना। दिन भर आप जिस चीज में फंसी होती हैं, रात को लेटती हैं, सोती हैं, वही चीज ख्वाब में भी आना शुरू हो जाती है कि नहीं। ऐसा उसी तरीके से जागते हुए में भी वही ख्याल आ रहे होते हैं जिस काम में आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, ठीक है ना। तो जब आप अच्छे कामों के अंदर मसरूफ हो जाएंगे ना, तो फिर बुरे कामों के वसाविस के लिए जगह ही नहीं रहेगी जहन के अंदर, ठीक है ना। कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप का मतलब क्या, कि जिस माइंड के अंदर अच्छी बातें नहीं है बल्कि वो खाली जहन है, बेकार है बिल्कुल, ठीक है, अब वो डेविल्स वर्कशॉप है। अब डेविल जो है उसके अंदर आकर के वसाविस डालता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों इसका हल है, एक तो जिक्र कल्बी और दूसरा ये कि अपने आप को अच्छे कामों के अंदर मसरूफ करके रखना। अच्छा, तो मौत की बात हो रही थी कि उसके निकलने के वक्त यानी रूह के निकलने के वक्त तकलीफ और अलम का एहसास अमरे तबीई है, ये एक नेचुरल सी बात है। रहा बाज अहलुल्लाह का ये मामला कि उनको मौत से लज्जत व राहत हासिल होती है, ये दुनिया की तंगियों से निजात हुई और महबूब अकबर से मुलाकात का वक्त आ गया, तो ये एक दूसरी तरह की लज्जत है, ठीक है ना। यानी ये एक अच्छा टेस्ट है कि अलमौतु जसरुन, मौत तो एक पुल है, यूसिलुल हबीबा इलल हबीबी, कि ये हबीब को अपने हबीब से मिला देता है। भाई ब्रिज के बगैर आप क्रॉस करके दूसरी तरफ कैसे जाएंगे, अगर ब्रिज ही ना हो तो मौत होगी तो क्रॉस करके उधर जाएंगे ना अल्लाह ताला की तरफ, आलम बरज़ख और आलम आखिरत की तरफ, ठीक है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौत आने लगी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए रूह निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे आपकी रूह निकालने के लिए आया हूँ, क्योंकि अंबिया के साथ ऐसा होता है, पहले से बता देते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मेरे साथ इसराइल आए हुए हैं आपकी भी रूह निकालने के लिए। तो अंबिया के साथ डिस्कशंस भी होती हैं ऐसे मौके के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी साबित है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या जिब्राइल, अल्लाह से जाकर आप कह दीजिए कि क्या कोई ऐसा भी दोस्त है जो कि अपने दोस्त की रूह निकलवाने का हुक्म दे रहा है ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास वापस गए, अल्लाह ताला से कहा कि भाई आपके खलील तो ये फरमा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा दोस्त है जो किसी दोस्त अपने दोस्त की रूह निकालना चाहता हो, है ना, क्योंकि रूह निकालने में तकलीफ होती है, दोस्त को तकलीफ पहुंचाना चाहता है, ये कैसा दोस्त है भाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सादा इंसान थे, मुखलिस इंसान थे, है ना, कामिल तौहीद के ऊपर थे, ऐसी बातें उन्होंने तौहीद और इखलास के साथ करी है। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ जाकर के मेरे खलील से कह दो कि क्या आपने ऐसे दोस्त को देखा कि जो अपने दोस्त से मुलाकात से कराहियत रखता हो, है ना, कि भाई ये मौत जो है ना ये तो दोस्त से मुलाकात का एक बहाना है, सबब है ये, तो भाई आप कैसे दोस्त हैं मेरे कि आप मुझसे मुलाकात नहीं करना चाहते बल्कि उसको बुरा समझ रहे हैं, है ना। तो अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जवाब सुना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज्जल अज्जल, जल्दी करें जिब्राइल, जल्दी करें जिब्राइल, है ना, मुझे जल्दी अपने दोस्त से मिला दें, ठीक है ना। तो ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, अल्लाह वाले, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह से दोस्ती बनाई होती है ना, उनकी ये कैफियत होती है मौत के वक्त। और जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला से दुश्मनी लगाई है, अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह ताला के दीन की मुखालफत, अल्लाह वालों की मुखालफत, अब ये तो दुश्मन हो गए ना अल्लाह ताला के, तो अब मौत के वक्त जब अल्लाह ताला के पास पेशी इनके सामने आएगा कि भाई अब तो तुमने पेश होना है अल्लाह के सामने, तो फिर कहाँ दिल जाएगा उनका, कहाँ कौन सी मौत अच्छी लगेगी उस वक्त, ठीक है। तो अहलुल्लाह के साथ ऐसा होता है कि दुनिया की तंगियों से निजात हुई और महबूब अकबर से मुलाकात का वक्त आ गया, तो ये एक दूसरी तरह की लज्जत है जो मुफारकते बदन की तबीई तकलीफ के मुनाफी नहीं है ना। यानी वो जो तकलीफ होगी अब रूह के निकलने के वक्त की, तो वो तकलीफ अपनी जगह पर और ये लज्जत अपनी जगह पर, क्योंकि जब कोई बड़ी राहत और बड़ा फायदा सामने होता है तो उसके लिए छोटी तकलीफ बर्दाश्त करना आसान हो जाता है ना भाई। माँ बच्चे के लिए सारी सारी रात की तकलीफ बर्दाश्त करती है, क्या क्या कुछ नहीं करती, है ना, हत्ता के जब डिलीवरी हो रही होती है उस वक्त की तकलीफ तो ऐसी तकलीफ सब, है ना, सबको पता है बात, लेकिन तैयार नहीं जी, औलाद मिलेगी, मेरी आंखों की ठंडक मिलेगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा मिलेगी, ये होगा वो होगा, मैं सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लूंगी, कितनी सिंपल सी बात है, इसको समझना तो कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है, और खुसूसन औरतों के लिए, तो उसके लिए छोटी तकलीफ बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। इस मानी के लिहाज से बाज अहलुल्लाह ने दुनिया के गम व रंज और मुसीबतों को भी महबूब करार दिया है कि अज मोहब्बत तल खुहा शीरी शवन, ठीक है, कि मोहब्बत के अंदर जो है ना, तो यानी तलखी भी जो होती है ना वो शीरीनी बन जाती है, ठीक है, पंजाबी का शेर हमारे हजरत भी पढ़ते हैं ना, शेर तो मुझे याद नहीं है, पंजाबी भी नहीं आती ना, ना फारसी आती है ना पंजाबी, कि मैं यानी दुखों के ऊपर अपने सुख को कुर्बान कर दूं, इसलिए कि दुख जो होते हैं ना वो यार से मिला देते हैं इंसान को, तो मैं अपने सुखों को अपने दुखों के ऊपर कुर्बान कर दूं, ठीक है। मौलाना रूम ने भी इसी किस्म का कोई शेर फरमाया, रंज राहत शद
चू मतलब शत बुजुर्ग, गर्द गिला तू दियाए चश्मी गर्ग। फारसी नहीं आती। चले मतलब इंशाल्लाह समझ में आ गया ना, बस फिर ठीक है। अच्छा हदीस मुबारका का ये मजमून आपको यकीनन पता होगा कि शहीद, शहीद एक ऐसा शख्स होगा कि जो कि दुनिया के अंदर वापस आने की तमन्ना करेगा और दोबारा से शहीद होने की तमन्ना करेगा, ठीक है ना। शहीद जो मैदान जंग के अंदर शहीद हुआ होता है काफिरों से लड़ते हुए, चाहे वो अपने घर में काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो जाए, चाहे सड़क के ऊपर, चाहे जो है बाकायदा बैटल ग्राउंड के अंदर, लेकिन शहीद जो मैदान जंग का शहीद होता है, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारे शहीद होते हैं ना, जैसे हदीस में आया कि जो डूब के मर गया वो भी शहीद है, जो पेट के मर्ज की वजह से मर गया तो वो भी शहीद है, ठीक है ना। लेकिन वो शहादत के दर्जे कम दर्जे के होते हैं, और जो मैदान जंग के अंदर शहादत होती है वो असल शहादत वाला दर्जा होता है। तो ऐसा जो शख्स होगा वो वाहिद शख्स होगा, शहीद वो वाहिद कैटेगरी है कि जो कि दुनिया में आ करके फिर से मौत की तमन्ना करेगी, फिर से मौत की तमन्ना करेगी, दुनिया में आ जाए फिर से मौत, फिर से मैं शहीद हूं, फिर वापस आऊं, फिर शहीद हूं, फिर वापस आऊं, फिर शहीद हूं। क्या मतलब कि बाकी जितने भी अहलुल्लाह हैं, नेक लोग हैं, उनको मौत के वक्त तकलीफ और अजियत हो रही होगी, उनमें से कोई वापस आने के लिए नहीं कहेगा। सालिहीन, सादिकीन, अंबिया, किसी के बारे में नहीं है कि ये वापस आने के लिए कहेंगे इस दुनिया के अंदर। भाई चले गए एक दफा, अब जान छूटी, अब जन्नत में आलम बरजख के अंदर मजे कर रहे हैं, अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला के दूसरे दोस्तों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, आराम से जिंदगी गुजर रही है ना। वापस जा करके मौत की जो तकलीफ थी यार, बस एक दफा हो गया ना, बस गुजर गए वहां से, आ गए ना, बस अब हमें दोबारा नहीं जाना। शहीद वापस आना चाहेगा। क्या मतलब कि शहादत के वक्त वो वाली तकलीफ, रूह निकलने वाली तकलीफ शहादत के वक्त नहीं होती। जो रूह निकलने वाली तकलीफ बाकी सबको होगी, चाहे अंबिया हो, सादिकीन हो, सुलहा हो, सालिहीन हो, उनको रूह निकलने के वक्त वाली तकलीफ होगी, शहीद को नहीं होगी, ठीक है ना। ये नहीं कि शहीद जो है वो अंबिया से अफजल हो गया, नहीं, सिद्दीकीन से अफजल हो गया, बिल्कुल भी नहीं, शहीद अफजल नहीं हो गया, लेकिन ये एक फेल जो है ना, अपनी जान को अल्लाह की मोहब्बत के अंदर निसार कर देना, ये एक ऐसा फेल अल्लाह ताला को पसंद है कि अल्लाह ताला ने इस तकलीफ से शहीदों को एग्जेम्प्ट कर दिया है, शहीदों को एग्जेम्प्ट कर दिया है, बल्कि शहीदों को उस जान निकलने के वक्त लज्जत हो रही होती है, सिर्फ मजा आ रहा होता है, तकलीफ हो ही नहीं रही होती। भाई इस लज्जत की खातिर वो वापस आना चाहेंगे, दुनिया के अंदर वापस आना चाहेंगे, ठीक है ना। औरत हो या मर्द, ये नहीं कि ये जो शहादत है ये सिर्फ मर्दों को मिल सकती है, औरत को नहीं मिल सकती। इस्लाम की पहली शहीद ही औरत थी कि नहीं थी, पहली शहीद। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब फौज जाके ज्वाइन कर लें सारी की सारी, है ना। हाँ भाई अच्छा है, तो बड़ा फौज की नौकरी तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी नौकरी होती है, सबसे ज्यादा पर्क्स जो है वो फौजियों को मिलते हैं, फिर प्लॉट भी मिलता है रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले भी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद अलग प्लॉट मिलता है, पैका अलग होता है, तो चलो जी फौज भी ज्वाइन कर लेते हैं, शहादत भी मिल जाएगी और प्लॉट भी मिल जाएगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ये फौज वाली शहादत की बात नहीं हो रही है पहली बात, ठीक है ना, ये अल्लाह के दीन वाली शहादत की बात हो रही है, ठीक है ना। हजरत सुमैया, समरिया नहीं, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है ना, अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा, ठीक है, पहली शहीदा वो थी, ठीक। तो मर्द को भी शहादत मिल सकती है, औरत को भी शहादत मिल सकती है, और दोनों के साथ ये वाला मामला कि लज्जत होगी मौत के वक्त की। ये आजिज याद है, बहुत छोटा यानी बहुत ही कम उम्र था, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक बस एक थी, वैसे तो कुछ खास पता नहीं था, लेकिन हजरत यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह का एक एक पूरा का पूरा आपके मसाइल और उनका हल का सफा आता था रोजनामा जंग में, जो कि हमारे घर में आया करता था। तो उस वक्त ना अच्छी तरह याद है कि मौत की तकालीफ के ऊपर और शहादत के ऊपर जो लज्जत मिलती है ना, कोई मजमून साजिश की नजर से गुजरा था, बस वो ऐसा दिल में जाकर के पैवस्त हुआ कि उस वक्त से ना अल्लाह ताला से खौफ के मारे, मौत की सख्ती से खौफ की वजह से, बाकी चीजें तो बाद में समझ में आई, ठीक ہے نا، اللہ کی محبت، یہ سب تو جب مشاہد سے جوڑے تب بات سمجھ میں آئی، لیکن اس وقت جو ہے نا بچپن میں وہ بات پڑھ کر کے کہ موت کی کیسی کیسی سختیاں ہوتی ہیں اور شہید کے لیے کیسی کیسی لذتیں ہوتی ہیں، اس وقت سے دل میں نا بس اللہ، اے اللہ بس شہادت، شہادت چاہیے بس، ہے نا، اور کچھ نہیں چاہیے، شہادت چاہیے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. پھر بعد میں بات سمجھ میں آئی تو پھر اور بھی چیزیں کلیئر ہو گئیں، لیکن یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اس معنی کے لحاظ سے. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر تکلیف و راحت آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک اور بہت ہی بنیادی قسم کا کانسیپٹ ہمارے دین کے اندر. فرماتے ہیں کہ یعنی ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے انسان کی آزمائش کرتے ہیں. آزمائش کا مطلب آزمانا، ٹیسٹ کرنا، ٹھیک ہے. شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے، جیسے بیماری، رنج و غم، فقر و فاقہ، ٹھیک ہے نا. یہ شر کی تعریف، نوٹ کریں اس کو، بہت اہم بات ہے یہاں پر، کہ شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے، جیسے بیماری، رنج و غم، فقر و فاقہ. اور خیر سے اس کے بالمقابل ہر مرغوب طبع، مرغوب طبع چیز ہے، یعنی جو طبیعت کو مرغوب ہو، آپ کی طبیعت جس چیز کی طرف راغب ہو، طبع، طبیعت، نیچر، جس چیز کی طرف راغب ہونا وہ خیر ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے صحت و عافیت، خوشی و راحت، غنا و اسباب عیش وغیرہ، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ حضرت نے جو یہ جملہ لکھا ہے کیا یہ ایسا ہی ہے؟ شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے، جیسے بیماری، رنج و غم، فقر و فاقہ، ٹھیک ہے. تو اب اس کے اوپر سوال نہیں آنا چاہیے طالب علم کے ذہن میں کہ بیماری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آئی، ہے نا، اور رنج و غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اور کتنے سارے اور بھی غم پیش آئے، اپنے سگوں نے کیسے کیسے نہیں تکلیف اذیت پہنچائی. تو نبی علیہ السلام کو شر پہنچ رہے تھے، اس تعریف سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو شر پہنچ رہا تھا. اور آگے جو فرمایا خیر، خیر سے مراد جو ہے وہ صحت و عافیت، خوشی و راحت، غنا و اسباب. تو بھائی صحت و عافیت تو کافروں کو بھی ملتی ہے، ابو جہل کا بھی بڑی اچھی صحت تھی، اور فرعون کی تو اتنی اچھی صحت تھی کہ شاید اتنی اچھی صحت کبھی کسی انسان کو ملی نہیں جیسی فرعون کو صحت ملی تھی، ہے نا. خوشی اور راحت، کتنے کافروں کو خوشی اور راحت ملتی ہے، تو کیا کافروں کو خیر مل رہی ہوتی ہے؟ خیر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خیر کی لفظی تعریف کیا ہوتی ہے؟ لفظ کیا ہے یہ خیر؟ خیر کا مطلب ہوتا ہے اخیر، اخیرو. اصل میں جو خیر کا لفظ ہے نا یہ ہے اخیرو، اور اخیرو کا ترجمہ بنتا ہے سب سے زیادہ اچھی چیز، اخیرو. اور شر کا مطلب ہوتا ہے اشررو، سب سے زیادہ بری چیز. تو حضرت جو یہاں پہ لکھ رہے ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، کیا یہ ایسا ہی ہے جیسا یہ لکھا ہے انہوں نے، یا اس کی کچھ تفسیر ہے، یا اس کی تفسیر ہے کچھ سمجھانا پڑے گا اس کو، تفسیر کی تفسیر. یہ تفسیر ہی پڑھ رہے ہیں نا ہم، یہ قرآن کا ترجمہ یا قرآن کا کی عربی تو نہیں پڑھ رہے، ہم تو تفسیر پڑھ رہے ہیں. لیکن کیا اس تفسیر کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی نے لکھا بھی ہے یہاں پر کہ جی حضرت یہی سوال آیا ذہن میں، کیونکہ تکلیف برداشت ہی اسی امید پر کرتی ہوں کہ اللہ تعالی بہت اجر دیں گے. نہیں ہم تو اس جملے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں سوال آیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم اس جملے کی بات کر رہے ہیں کہ اس جملے کی کیا تفسیر کی ضرورت ہے، یا ایسی آپ کے سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم تو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شر کا مطلب ہوتا ہے اشررو، سب سے بری چیز، اور خیر کا مطلب ہوتا ہے اخیرو، سب سے اچھی چیز. تو پھر یہاں پر جو حضرت نے سب سے بری چیز کی تعریف لکھی ہے، بیماری، رنج و غم، فقر و فاقہ، تو سب سے بری چیز تو پھر نبیوں کو بھی پہنچتی ہے، اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ تو کافروں کو بھی پہنچتی ہے. تو تفسیر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تفسیر کیا ہے اس کی، یہ بھی اگر کوئی بتا دے. क्या तफसीर होगी इस जुमले की? शर वो होगा जिसकी वजह से मायूसी और बेसुकूनी आए। नहीं नहीं वो बाद की बातें आप कर रही हैं, हम तो इस जुमले की बात कर रहे हैं। इस जुमले की क्या तफसीर है ये बताएं। हम कहते हैं ना जी किताब पढ़ के तो बस मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे उस्ताद की जरूरत नहीं है। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि नहीं, उस्ताद के बगैर आप किताब नहीं समझ सकते। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि भी मेरे बगैर आप किताब नहीं समझ सकते, नहीं, अपने तो मसला ये है कि आप लोगों को लिख भी दिया है कल, है ना भाई, अपनी तारीफ करने का फायदा क्या? अगर आखिर में अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया तो करते रहे सारी की सारी तारीफें, अपने मुंह करें या दूसरों के मुंह करें, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मकसद तो ये है उसूल समझाना, क्योंकि हम जो है ना वो उसूल ही नहीं समझते ना, इस वजह से हम अपना नुकसान कर देते हैं। उस्ताद के बगैर तफसीर भी नहीं समझ सकते, इस फकीर के बगैर नहीं, इस फकीर के बगैर सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस्ताद के बगैर इन जनरल बिल्कुल उसूल की बात, उस्ताद के बगैर आप तफसीर भी नहीं समझ सकते, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इल्म जो है ना वो उस्ताद के वास्ते से पहुंचाना होता है। हम कहें उस्ताद की जरूरत नहीं, मेरे पास अकल है ना, मैं पढ़ूंगी और समझ लूंगी। कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला के बनाए हुए असबाब की जरूरत नहीं है, और ये मुतकब्बिराना सोच है, मुतकब्बिराना जुमला है, और अल्लाह ताला को तकब्बुर से नफरत है, बंदों के तकब्बुर से नफरत है, ठीक है। फिर ये शर क्या लिखा आपने कि फिर ये शर कर से हो सकती है। भाई इस जुमले की तफसीर जो है ना बहुत आसान सी और सादा सी तफसीर है, ठीक है ना। वो क्या है? वो ये है कि इस आयत में शर से मुराद हर खिलाफ तबा चीज है। इस आयत में शर से मुराद हर खिलाफ तबा चीज है, और इस आयत में खैर से मुराद हर मरगूब तबा चीज है। बस इतनी सी तफसीर है इस तफसीर की, इतनी सी तफसीर है। यहां पे लफ्ज खैर और लफ्ज शर जो है ना ये मुतलक नहीं है, मुतलक नहीं है यानी एब्सोल्यूट नहीं है, अंडर ऑल सिचुएशंस की बात नहीं हो रही यहां पर, यहां पर सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, दुनियावी एतबार से बात हो रही है, तबीयी एतबार से बात हो रही है, ठीक है ना, कि इंसान की तबीयत के लिए शर वो चीज होती है जो कि उसकी तबीयत को नापसंद हो, और इंसान की तबीयत के लिए खैर वो चीज होती है जो कि उसकी तबीयत को पसंद हो। ये एब्सोल्यूटली बात नहीं हो रही, एब्सोल्यूटली को अरबी में कहते हैं मुतलकन, ठीक है ना, ये मुतलकन बात नहीं हो रही, ये सिर्फ तबीयत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये है तफसीर इस तफसीर की, यानी तफसीर के इस जुमले की ये तफसीर है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि शर से मुराद हर खिलाफ तबा चीज है, यहां पर शर से मुराद हर खिलाफ तबा चीज है, जैसे बीमारी रंज व गम फक्र फाका, और यहां पर खैर से इसके बिलमुकाबिल हर मरगूब तबा चीज मुराद है, जैसे सेहत तो आफियत, खुशी और राहत, गिना व असबाब ऐश वगैरह, ठीक है ना। ये दोनों तरह की चीजें इस दुनिया में इंसान की आजमाइश के लिए आती हैं कि शर यानी खिलाफ तबा उमूर पर सबर करके उसका हक अदा करना, क्योंकि खिलाफ तबा चीज जो है वो हमारी तबीयत के खिलाफ है, वो मेरी तबीयत के खिलाफ है, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग के खिलाफ नहीं है, अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए इसी चीज की प्लान का प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो भाई मेरी तबीयत को ये बात पसंद नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ताला की, अब तबीयत का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो मशीयत है, अल्लाह ताला की जो तकदीर है, उसमें तो अल्लाह ने ऐसे ही पसंद किया ना मेरे लिए, है ना, कभी कि मुझे जो है वो ये चीज, ये तकलीफ, ये आजमाइश है वो मुझे सहनी पड़े, है ना, अल्लाह की तरफ से है, तो सबर करना, ठीक है, सबर कर लेता है बंदा तो हक अदा कर देता है, यानी सच, हक अदा करने का मतलब यहां पर कि सच को तस्लीम कर लेता है कि हाँ ये जो कैफियत, ये जो हालात मेरे ऊपर आए हैं ये हक जात की तरफ से है, ये अल हक की तरफ से है,
یہ سچ کی طرف سے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ڈکری کری ہے میرے لیے، ٹھیک ہے نا. اور خیر یعنی مرغوب خاطر چیزوں پر شکر کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ 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 دنیا کے اندر یہ ہے، ٹھیک ہے. کیا خلاف نفس اور خلاف طبع ایک چیز ہے؟ خلاف نفس اور خلاف طبع ایک چیز ہے؟ ہاں یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. جو خلاف طبع چیز ہوتی ہے نا وہی خلاف نفس چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. نفس کو وہی چیز پسند ہوتی ہے جو کہ اس کی طبیعت کو پسند ہوتی ہے، اور جو چیز طبیعت کو پسند نہیں ہے وہی چیز نفس کو پسند نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے سوال کا طبیعی جواب ہوتا ہے نہ پاک سے چیز کی پناہ. اگر انسان سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، بٹ کچھ ٹائم بعد پھر سے وہ گناہ کر لے مگر احساس ہو کہ یہ گناہ ہے اور بے چین بھی ہو جائے مگر گناہ نہ چھوٹ پائے تو کیا کرے؟ یعنی سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے اور پھر گناہ کو چھوڑ دے لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر سے وہ گناہ اس سے ہو جائے لیکن اس کی طبیعت بے چین ہو جائے اس گناہ کے ہونے کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کو چھوڑ نہ پائے تو پھر اب وہ کیا کرے؟ پھر وہ کیا کرے؟ وہ پھر سے توبہ کر لے، وہ پھر سے توبہ کرے، ٹھیک ہے نا. پہلے جو توبہ کری تھی وہ پچھلے گناہوں کے اوپر توبہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور اب جو نئے سرے سے گناہ ہو گئے اب ان گناہوں کے اوپر نئی توبہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو وہی چیز جو پہلے ایک دفعہ کر چکی ہیں وہی چیز ریپیٹ کرنی پڑے گی. توبہ کی مثال ہمارے مشائخ غسل کرنے سے دیتے ہیں، ہے نا. بھائی آپ باہر نکلی، آندھی آئی ہوئی تھی، مٹی کی آندھی آئی ہوئی تھی، آپ پورا پورا مٹی سے بھر گئی، ہے نا، گندگی آ گئی، جو بھی ہو گیا سب کچھ. اب گھر میں آئی، نہا لیں آ کر کے بھائی. اب کوئی کہے کہ نہیں کل مجھے پھر سے نکلنا ہے، میں پھر سے گندی ہو جاؤں گی، ہے نا، پھر سے مٹی ہو جائے گی، تو میں آج کیوں نہ ہوں؟ کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی نہاؤ یار، اگلے دن پھر نہا لینا، ٹھیک ہے نا. اگر کل جو ہو گیا تم پتا بھی نہیں ہے کہ تم نے کل زندہ رہنے کے نہیں رہنا، ہمیں اتنا زیادہ ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ کل تو میں نے زندہ رہنا ہی ہے، کل تو میں نے باہر جانا ہی ہے، ہمیں کیا پتا کل زندہ رہنا ہے کل باہر جانا ہے، لیکن ہم ایسے وسوخ سے کہتے ہیں کہ جی کل پھر سے میں گندی ہو جاؤں گی. بھائی کیا پتا آپ کو پھر سے گندی ہو جائے گی، آج کا آج نہا لیں کل کی کل دیکھی جائے گی، گندی ہو گئی کل پھر نہا لیں گے. بالکل اسی طریقے سے گناہ سے توبہ ابھی کر لی، اب پھر سے گناہ ہو گیا تو بھائی پھر سے نہا لیں، پھر سے توبہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی اگر ہو گیا تو پھر سے نہا لیں گے، پھر سے توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن توبہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں کل پھر کروں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے دماغ ذہن میں بات، ٹھیک ہے نا، کہ کل میں پھر سے کروں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی دیکھیں فرق ہے دونوں باتوں کے اندر. ایک چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، اگر مجھے گناہ کا ماحول پھر مل گیا تو پھر شاید میں اپنے آپ کو نہ بچا سکوں گناہ سے، یہ ایک الگ بات ہے. اور یہ سوچنا کہ نہیں میں نے تو پھر سے کرنا ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے، ہم اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے، ٹھیک ہے نا. توبہ یہ ہے کہ دل میں ارادہ کر لیں کہ کل نہیں کروں گی، ٹھیک ہے نا، بس اتنی سی بات ہے یار اس میں. اچھا صبر کی تھوڑی سی وضاحت کریے، آگے انشاءاللہ آ رہی ہے یہ وضاحت انشاءاللہ. اگر بچے کوئی جھوٹ بولے ہم کو غصہ آئے تو یہی تو خلاف طبع چیز ہے، اس سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ اگر بچے جھوٹ بولیں اور ہم کو غصہ آئے تو یہی تو خلاف طبع چیز ہے، اسے کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ تو یہ ہے نا خلاف طبع چیز، جھوٹ بولیں تو ہمیں غصہ آئے، ٹھیک ہے. تو اب اس خلاف طبع چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. جب کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے نا اور آپ کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے خلاف طبع بات ہوتی ہے، مجھ سے کیوں جھوٹ بولا، ہے نا، مجھ سے کیوں جھوٹ بولا، وہ اب غصہ آ رہا ہے. اب اس کے اوپر صبر کرنا، صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ جو آپ کا سوال تھا کہ صبر کی وضاحت کر دیں تو یہ اس کے اندر انکلوڈ ہو جائے گا. اچھا ایک منٹ ہے، गाने सुनना हराम है और छोड़ ना पा रही हूँ, फिर तौबा कैसे करें? गाने सुनना हराम है, छोड़ ना पा रहे हूं, तो उससे तौबा कैसे करें? अच्छा, गाने क्या अभी चल रहे हैं आपके घर के अंदर? गाने अभी चल रहे हैं? अभी तो नहीं चल रहे हैं ना, ठीक है ना? गाने तो चलेंगे जब आप इस क्लास से फारिग हो जाएंगी, फिर उसके बाद शायद घर में कुछ और काम काज वगैरह करना हो, फिर उसके बाद जो है ना जब थक हार करके कहीं बैठेंगी तो फिर गाने स्टार्ट करेंगी, है ना? क्योंकि गाने नहीं छोड़ पा रही हैं, ठीक है ना? तो ये चीज जो होगी ये होगी अब से 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ऐसा मामला आएगा कि गाने फिर से आप स्टार्ट कर लेंगी। अभी तो गाना नहीं सुन रही ना, अभी तो गाना नहीं सुन रही ना, या सुन रही है? सब भी गाने चल रहे हैं, राइट? अभी तो गाना नहीं सुन रही ना, तौबा अभी करें, अभी, कि ए अल्लाह मैं गुनाह, मैं गाना सुनने को हराम समझती हूँ, मैं उसके ऊपर नादिम शर्मिंदा हूं कि इस वक्त से पहले मैंने जितनी म्यूजिक सुनी है मैं उसके ऊपर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूं, और ए अल्लाह मैं अभी आपसे दिल में ये इरादा कर रही हूं कि मैं आइंदा गाना नहीं सुनूंगी, ठीक है ना? मैं आइंदा गाना नहीं सुनूंगी, ठीक है ना? ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी चीज क्या है तौबा के अंदर, कि ए अल्लाह जो तीसरा फेल है ना, कि ये जो तौबा करते हैं तो तौबा के ऊपर कुछ इस्तेकामत के लिए कुछ करना भी चाहिए, तो ए अल्लाह मैं जो हूं ना वो जो गाने सुनने की मेरे पास डिवाइस है ना, तो मैं उस डिवाइस के अंदर से जो म्यूजिक वाली चीजें है ना मैं उनको डिलीट कर दूंगी, ठीक है ना? मैं म्यूजिक के सारी चीजों को डिलीट कर, ठीक है ना? अब मैं या मेरे घर में जो है वो जो म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, जो भी टेप रिकॉर्डर है, म्यूट करने प्लीज अपने आप, तो जो सीडी प्लेयर वगैरह है या जो भी चीज है, तो मैं उसको जो है ना वो मैं कहीं छुपा दूंगी, ठीक है ना? या मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगी, कचरे में फेंक दूंगी, ठीक है ना? तो ये तीन चीजें कर लें तो आपकी तौबा हो गई, ठीक है ना? अब कल फिर से आप डाउनलोड कर लें अपने फोन के ऊपर गाने, तो वो कल देखी जाएगी, वो कल कल आपकी जिंदगी में आएगा ना, अगर अगर आ गया आपकी जिंदगी में कल, हो सकता है आज ही अल्लाह ताला को प्यारी हो जाए, यानी प्यारी, वाकई प्यारी हो जाए, क्योंकि तौबा के बाद बंदा प्यारा हो जाता है अल्लाह ताला को, ठीक है ना? क्या पता है आपको, आपने कोई कोई है गारंटी कि कल भी आपने देखनी है इस दुनिया के अंदर? नहीं गारंटी है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना भाई कि कल मैंने देखनी है, ठीक है ना? तो कल अगर आप डाउनलोड, अगर जिंदगी रही, अगर मेरे हाथ पैर काम करते रहे, खुदा ना खासा फालिज भी तो हो सकता है, राइट? फालिज हो गया तो फिर कैसे डाउनलोड करेंगी, ठीक है ना? तो अगर मेरी जिंदगी रही, अगर मेरे हाथ पैर काम करते रहे, और अगर मेरा फोन भी काम करता रहा, फोन पे डाउनलोड करना है ना, पता चला फोन पानी में गिर गया तो फिर कैसे डाउनलोड करेंगे फोन के ऊपर? भाई देखें, गुनाह भी जो है ना ये भी आसान चीज नहीं है, गुनाह के लिए भी बहुत सारी शराइत होती हैं। जिंदगी रहे तब इंसान गुनाह करेगा, फालिज ना हो इंसान के ऊपर तब इंसान ऐसे हाथ पैर वाले गुनाह करेगा ना। जिस चीज से गुनाह करता है, मिसाल के तौर पर फोन, वो फोन चल रहा होगा तब गुनाह करेंगे ना। व्हाट इफ द फोन क्रैशेस, है ना? फोन जो है वो पानी में गिर गया, फिर कैसे फोन वाला गुनाह करेंगे? यानी हम तौबा नहीं जो कर रहे होते हैं ना, हम सोच नहीं रहे होते कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई कर लो यार, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे, अल्लाह ताला बहुत कुछ कर सकते हैं आपको तौबा पे कायम रखने के लिए। हम अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश तो करें ना। तो आप अभी तौबा कर लें, मैं नहीं करूंगी, और मैं जो गुनाह वाली डिवाइस है या उसमें से चीजों को डिलीट कर दूंगी, क्लास के बाद मैंने डिलीट कर देना है, ठीक है ना? फिर अगर कल जिंदगी रही, फालिज भी नहीं हुआ और फोन भी पानी में नहीं गिरा, और आप जो है वो फिर से म्यूजिक डाउनलोड कर लिया आपने, है ना, तो ये कल का गुनाह होगा, ये एक नया गुनाह होगा, इस नए गुनाह के ऊपर आप कल तौबा करिएगा, ठीक है ना? इतनी सी बात है, तौबा की ये हकीकत है, ठीक है? अच्छा, ये जो खिलाफ तबाह वगैरह वाली बातें चल रही हैं, तो ये अभी अभी करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे को आजमाइश में डालता हूँ, जो उस परेशानी और तकलीफ में मुबतला होकर मुझे पुकारते हैं तो उनको बेहतर अजर अता करता हूँ, मगर जो गैर मुस्लिम होते हैं उनकी अल्लाह, अपने बंदे को आजमाइश में डालता हूँ, जो उस परेशानी और तकलीफ में मुझे पुकारते हैं तो उनको बेहतर अजर अता करता हूँ, मगर जो गैर मुस्लिम होते हैं उनकी अल्लाह,
آگے اپنا سوال پورا لکھیں پہلے، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم یہ آگے پڑھتے ہیں کہ شر یعنی خلاف طبع امور پر صبر کر کے اس کا حق ادا کرنا، اور خیر یعنی مرغوب خاطر چیزوں پر شکر کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ آزمائش میں کامیابی، یہ صبر کرنا اور شکر کرنا. آزمائش یہ ہے کہ کون اس پر ثابت قدم رہتا ہے، کون نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا؟ کہ صبر کے اوپر کون ثابت قدم رہتا ہے اور شکر کے اوپر کون ثابت قدم رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ حقوق شکر پر ثابت قدم رہنا بنسبت حقوق صبر کے مشکل ہے. انسان کو تکلیف پر صبر کرنا اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا عیش و عشرت اور آرام و راحت میں اس کے حق شکر ادا کرنے پر ثابت قدمی مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک کافی تفصیلی ٹاپک ہے کہ شکر کے اوپر، سوری، حقوق شکر پر ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت حقوق صبر کے اوپر ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے؟ مشکل سا جملہ بھی ہے، تو اس کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے، ہو سکتا ہے اگلی کلاس کے اندر ہی. ابھی جو پیچھے والی بات ہے نا، خلاف طبع، اس کے اوپر بات کرنی ہے. پہلے یہ والا سوال جو ہے، جو اگر میں نے صحیح سمجھا آپ کے سوال کو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں جو اس پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو کر مجھے پکارتے ہیں، تو ان کو بہتر اجر عطا کرتا ہوں، مگر جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی اللہ جلدی سن لیتے ہیں. مطلب کہ ان کا ایک دفعہ پکارنا اور مانگنا، آپ کا سوال جو ہے نا، یہ ایک ظاہر ہے اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سوال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے ساجس کو کہ آپ کا کانٹیکسٹ جو ہے نا، وہ آپ کو جو جواب مطلوب ہے نا، اس جواب کے لیے کانٹیکسٹ کا سمجھنا بڑا اہم ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کا سوال از ڈیفینیٹلی بیکاز آف سم ریزنس، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اس طرح کا سوال جو ہے نا، یہ یعنی ایسا اسٹریٹ فارورڈ اور کلیئر سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی یہ کہ یہ جو اصول کی بات ہے کہ ہاں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں، تو یہ جو اللہ کو پکارنے والا معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے، انم کیا ہے وہ، انما مجھ کوئی حافظہ ہے یہاں پہ، انما یجیب المصفر اذا دعا، کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی جواب دینے والا ہے. مصفر، جو بھی مصفر ہوتا ہے نا، یعنی اضطرار میں ہوتا ہے، ایک مشکل کیفیت کے اندر ہوتا ہے، اور اس مشکل کیفیت میں وہ اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں نا، اس کو. امن یجیب المصفر اذا دعا، سبحان اللہ، ہے نا؟ کون ہے جو کہ مستر کو جواب دے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ کون ہے سوائے اللہ کے، ہے نا؟ تو یہاں پر نا، مستر جو ہے نا، یہ عموم ہے، عام ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے. حتیٰ کہ جب کشتی بھون میں پھنس جاتی ہے اور مشرکین اس کشتی کے اندر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے نا، ان کی سنتے ہیں، اور سن کر کے اللہ تعالیٰ کبھی ان کی کشتی کو، ایسے نہیں کہ ہمیشہ کشتی کو اس طرح کو ادھر سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دعا کی مقبولیت، دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس کی صرف ایک شکل نہیں ہوتی کہ جیسا مانگا ہے ویسے ہی پورا کر دو. دعا کی قبولیت کی اور شکلیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن میں اس بات کا ذکر ہے نا، کہ جو مشرکین جب کشتی کے بھور میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پکارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو بھور سے نکال دیتے ہیں، تو وہ پھر سے شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا مطلب کہ کافر اور مشرک بھی اگر اضطرار کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ان کی دعا اوپر پہنچتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جیسے کہ کان بند کر لیتے ہیں، نہیں سننا تمہاری دعا، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی ان کی جو ہے نا، وہ اس طریقے سے اسی وقت پوری بھی کر دیتے ہیں کہ کشتی کو بھنور سے نکال دیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ واپس کفر کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ انہوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کافر جب اللہ تعالیٰ سے اضطرار میں مدد مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت
ان ایکشن ہے، وہ صفت جو ہے وہ رحمان والی صفت ہے، رحمان والی صفت. رحمان وہ ذات، اس ذات کو کہتے ہیں جو کہ دوست اور دشمن دونوں کو نوازتی ہے، رائٹ؟ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کو نوازتی ہے، وہ رحمان والی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے بہت سے، اچھا آپ کا یہ کانٹیکسٹ یہ ہے، اب آپ نے کانٹیکسٹ بتایا نا کہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں مگر وہ ساری زندگی غربت میں گزار دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے حالات نہیں بدلے. میرے ماموں نے ساری زندگی اسی حالت میں گزار دی. ماموں مسلمان تھے نا، نماز پڑھتے تھے، نیک کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ایمان والے تھے نا، اس کا مطلب ہے الحمدللہ. تو ایمان والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ثواب دے دیتے ہیں. کیا مطلب ثواب؟ ثواب کی تعریف پتہ ہے؟ ثواب کی تعریف بھی تو ایک بڑی اہم چیز ہے. ثواب کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ ثواب دے دیتے ہیں، جیسے ٹافی دے دیتے ہیں بچوں کو، ہم کہتے ہیں چاکلیٹ دے دیتے ہیں، ٹافی دے دیتے ہیں، چیز دے دیتے ہیں، چیز بازار سے چیز خرید کے لانا، اسی طریقے سے ثواب. تو ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجر. اچھا جی، اجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہم بات کرتے ہیں ثواب مل جاتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بات، مطلب کیا مل جاتا ہے مجھے. الحمدللہ انہوں نے سنی ہوئی یہ بات، بچوں کو بھی ابھی سمجھائی تھی آپ کے خاندان کے، خوش ہونا. نہیں، ثواب کا مطلب خوش ہونا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں خالی یہ نہیں. نہیں، ثواب کا مطلب ہوتا ہے جنت کی کرنسی دے دیتے ہیں، جنت کی کرنسی. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی جب تم جنت میں ایمان کی وجہ سے داخل ہو جاؤ گے نا، اب وہاں پہ تمہیں جنت میں کون سا والا مقام ملے گا، کون سا والا گھر ملے گا، کتنی اچھی سی نہر ملے گی، کتنی اچھی حور یا غلمان ملیں گے، ہے نا، یہ تمہاری کرنسی، جتنی کرنسی ہوگی اس کے حساب سے تمہیں ملیں گے. جیسے کہ جنت کے اندر ایک مارکیٹ لگی ہوگی، جیسے کہ مارکیٹ ہے نا، ویسے تو مارکیٹ نہیں ہوگی، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہوگا کہ جو جتنی کرنسی لے کے آئے گا اس کے حساب سے اس کو دے دیا جائے گا جنت کے اندر نعمتیں. تو بھائی ثواب، یہ طرح ثواب مل جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے. ثواب مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا مقام ہمارا کہاں پہ ملنا ہے، کیا ملنا ہے، کیسا ملنا ہے، یہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، تو دعا، الدعاء والعبادہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے، ہو العبادہ. ٹھیک ہے، اور عبادت کے اوپر ثواب ملتا ہے تو دعا کے اوپر ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جنت کی کرنسی مل جاتی ہے کہ ہاں بھائی پہلے تو تمہیں جنت میں جو ہے نا وہ یعنی یہ والا گھر ملنا تھا، اب تم نے دعا مانگ لی ہے نا، اب تمہارا گھر جو ہے نا جو جنت میں ملنا تھا نا وہ اس سے زیادہ بہتر ہو گیا، ہے نا، جنت کی نعمتیں بڑھا دی گئیں کیونکہ اب تمہارا ثواب بڑھ گیا. تو دعا کا مطلب ہوتا ہے ثواب، جنت کی کرنسی. اب اس کے بعد یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی دنیا کے اندر دعا جو ہے نا اس کی قبولیت ظاہر بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یعنی غریب ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، اس کی سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں بھی عطا کرنا ہے یا نہیں عطا کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں عطا کرنا ہے تب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ورنہ نہیں عطا کرتے ہیں. لیکن آخرت کا ثواب یہ حکمت پر موقوف نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم دعا مانگو گے مجھ سے، آخرت کا ثواب تمہیں ضرور بالضرور ملے گا. یہ نہیں کہ میں حکمت سے فیصلہ کروں گا کہ تمہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، نہیں، تمہاری نیت ہے، تم جو دعاؤں کی شرائط ہے وہ تم پوری کر لو گے تو دعا تمہاری ہو جائے گی، جب ہو جائے گی ثواب تو میں نے تمہیں دینا ہے، یہ میرا وعدہ ہے. دنیا میں تمہیں وہ چیز دینی ہے جو تم نے مانگی ہے یا نہیں دینی، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ میری حکمت پہ موقوف ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کی غربت کا دور نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس کے لیے غربت ہی بہتر تھی، غربت ہی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو میں آخرت میں ہی نوازوں، دنیا میں نہ نوازوں. ٹھیک ہے نا، دنیا میں نواز دوں گا تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. آگے یہ بات آ رہی ہے، یہیں پر یہ بات آ رہی ہے، حقوق شکر پر ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل کام ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ ہے, اس بندے کی طبیعت کے بارے میں پتہ ہے کہ میں نے اس کو مال اسباب دے دیا نا, یہ شکر نہیں کر پائے گا. اس کے لیے شکر کرنا زیادہ مشکل کام ہے, اس کے لیے صبر کرنا آسان کام ہے. صبر اس کے لیے آسان ہے, شکر اس کے لیے مشکل ہے. میں دے دوں گا تو یہ شکر نہیں کر پائے گا, یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا, یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا, ہے نا, یہ جنت سے محروم ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ وجہ ہوتی ہے. بہرحال خلاف طبع چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ چیز نہیں ہو تو اس کو کہتے ہیں خلاف طبع. بچہ ہم سے جھوٹ بولے یا بچہ کوئی ایسی چیز کرے جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو یہ چیز خلاف طبع ہوتی ہے. اس کے اوپر صبر کرنا, صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, صبر کرنے کا جیسے کہ اوپر سوال کیا تھا وہ لازمی جواب دے کر کے اس کلاس کو ہم نے ختم کرنا ہے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے خلاف طبع ہو تو ہم اس کے نتیجے میں کوئی ایسا ریئیکشن نہ کریں جو کہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, اللہ کے دین کے خلاف ہے. ہم کوئی ایسا ریئیکشن نہ کریں. ان سمپل ورڈز, ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں بلکہ اللہ کی فرما برداری کریں. یہ ہے صبر. یعنی جب کوئی بھی معاملہ ہمارے خلاف تباہ ہو رہا ہے, ہماری چاہت ہماری خواہش کے خلاف ہو رہا ہے, تو ہم اس کے اوپر اللہ کی نافرمانی والا ریئیکشن نہ کریں. یہ صبر ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ سچ ہے کہ انسان کو وقتاً فوقتاً جو پریشانی یا تکلیف ملتی ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے؟ ہاں, جو تکلیف اور پریشانیاں ایمان والے کو ملتی ہیں تو ہر تکلیف اور پریشانی سے اس کے گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں, کانٹا چبھنے کے اوپر بھی. تو بڑی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, ان کے اوپر بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ سچ کیسے پتا چلا کہ بھائی یہ سچ ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتایا نا یہ ساری باتیں. حدیث مبارکہ کے اندر یہ تفاصیل موجود ہیں. ٹھیک ہے, ویسے کافی دیر ہو جائے گی اگر ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے تو پھر اس وجہ سے کلاس کو روکنا بھی ضروری ہے. سوال آ رہے ہیں, اگر بچوں کو ڈانٹ دیا تو بھی صبر نہ ہوا؟ نہیں, بچوں کو فقط ڈانٹ دینا جو ہے نا, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ صبر کر رہے ہیں کہ نہیں صبر کر رہے ہیں, بلکہ چھلاہٹ کے اندر ڈانٹ دینا یہ صبر کے منافی ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ اگر تادیباً ڈانٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, بغیر ڈانٹے کام نہیں چل رہا, تو تادیباً جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں ادب سکھانے کے لیے تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہوتا. لیکن غصہ نکالنے کے لیے جھلاہٹ کی وجہ سے تو وہ صبر کے خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ بہت مشکل کام ہے ظاہر ہے, اور الگ الگ ڈسکشن ہے. یہاں پر کلاس کو ختم کر دیتے ہیں. الحمدللہ, السلام علیکم.